बभुव गोपी बीत बधु बधीट बधूटा
अद्वैत बीथी
नहीं पथिका अद्वैत बीथी पथिका
उपास्य
ये सब याद रहना है, हमको याद थी, अब मैं भूल गया, आलोचना नहीं है। इन सब श्लोक बड़े इम्पोर्टेंट। मैं कहाँ अद्वैत अद्वैत मार्ग में चलने वाला प्रसिद्ध पथिक था, किंतु हठात गोप बधु बधूटी अर्थात गोपी लंपट कृष्ण को हमने देखा, जो बंसी से विभूषित, हाथ में नव नीरदा आभार, बड़े सुंदर हाथ में कौ और बंसी, यहाँ अत्यंत सुंदर रूप से हंस रहे हैं बजा। मैं इस गोपियों के लंपट कृष्ण ने हमको अपने तरफ में आकृष्ट हो गया। कहाँ से सब आ जाती है। तो इस तरह से मत्स्यूदन सरस्वती थे, जी गोस्वामी ने उनको परम वैष्णव बना दिया, फिर वृंदावन में आ गए, फिर वृंदावन को उन्होंने छोड़ा नहीं, ऐसे सब उन्होंने बनाए थे। तो मध्वाचार्य जी बचपन से ही परम भगवत भक्त थे, थोड़े दिनों में समस्त विद्या को उन्होंने ये कर दिया और समस्त को एकदम मुखस्त कर दिया सब। एक दिन वो कहीं जा रहे थे, 20-25 हाथ लंबा एक लकड़ी थी बहुत मोटी, जिसको सैकड़ों आदमी नहीं हटा पा रहे थे, और उस रास्ते से जा रहे थे। उन्होंने कहा जी हटो तुम लोग, तो रास्ते में पड़ी हुई थी और सबको हटा दिया और अपने आप पकड़ करके और घर में फेंक दिया। इतने बड़े बलवान थे, इसलिए वायु के अवतार कहलाते हैं। वायु माने
वायु के तृतीय अवतार,
हनुमान ही को वायु कहते हैं, पवन के ये अवतार। एक बार कहीं जा रहे थे, एक कोई बहुत सम्राट था राजा,
महादेव
नाम था वो, कोई
उसको नहीं सरोवर खावन
सरोवर खुदवा रहा था,
बेकार का
और जो आदमी उसके राज्य में आदमी थे आने, जो कोई उधर से जाए बेगार लगा करके खुदवाता था, पैसा देता था नहीं किसी को, कुछ नहीं, जो कोई जाए जबरदस्ती खड़ा रहता था, करोगे ना तो मरोगे, मार डालेंगे तुम्हें, इसलिए डर के मारे लोग उसको खोद करके और मट्टी फेंक देते थे और तब जाने देता था। अंततः 4-5 कड़ाही या 20 कड़ाही जितना हो, 1 घंटा बेगार खटवा लेता तब जाने देता। जिस समय ये अपने शिष्यों के सहित उधर से जा रहे थे तो राजा ने इनको अटका दिया और बोला जैसे आप लोग मट्टी खोद करके फेंक करके तब जाइए। उन्होंने हमने आज जीवन भर मैंने कुदाल ली नहीं, मट्टी खोदी नहीं, तुम कैसे खोदते हो, हमको दिखला दो, हम लोग वैसा ही करेंगे। तो वो खोद करके दिखलाने लगा और वो खोदता रह गया और दिखलाता रह गया और वो चले गए। इसके बाद में वो जब पढ़ रहे थे तो उनको वैष्णव कोई पढ़ाने वाला नहीं मिला, मायावादी अद्वैतवादी गुरु से उन्होंने प्रारंभ से, उसका नाम जादव प्रकाश या अच्युत प्रेक्ष नाम था, बहुत विद्वान आदमी था न, और अद्वैतवादी सन्यासी था, एकदंडी सन्यासी ब्रह्मवादी, उनसे इन्होंने पढ़ा। पढ़ने के बाद में जब इनकी पढ़ाई समाप्त हो गई अब होने को थी, तो उनसे इनका शस्त्रार्थ हो गया, तो शस्त्रार्थ में अपने गुरु को उन्होंने परास्त किए और गुरु जी ने फिर इन्हीं से मंत्र लिया और मंत्र लेकर के फिर ये वैष्णव बने, उनको वैष्णव बना दिया। तब गुरु जी ही उनकी पूजा करने लगे, ऐसे ये लोग अद्भुत विद्वान थे। एक दंडी सन्यासी महाप्रभु जी ने भी एक दंडी अद्वैतवादी से सन्यास लिया, किंतु ये लोग अद्वैतवादी सन्यासी नहीं है, वेश लिया मुकुंद सेवन का व्रत, इसलिए यद्यपि उन्होंने एक दंड सन्यास लिया और उनके संप्रदाय में आज भी हो रहा है पूजा उसी तरह से, किंतु ये एक दंडी सन्यासी उस तरह के नहीं है, वैष्णव। अर्थात कैवल्यम कैवल्यिक प्रयोजनम, केवल एक प्रेमा भक्ति के लिए हम ये सन्यास लिया है, इस भाव से मैं ब्रह्म हूँ इस भाव से नहीं लिया, एकांतिक भक्ति के लिए एक दंड सन्यास उन लोगों ने इसी रूप में व्याख्या करके लेते हैं। और वो एक दिन स्नान करने जा रहे थे, समुद्र के किनारे स्नान कर रहे थे, इतने में एक नौका आकर के तट पर लग गई, और वो नौका आ रही थी द्वारका से, जा रही थी दक्षिण में, क्योंकि वो लोग तिलक करते हैं, उसमें तिलक की ही मिट्टी भरी हुई थी, बड़े बड़े ढेले गोपी तालाब से लेकर के उसमें भर दिया गया। तो नौका वहीं पर सामने लग गई जहाँ पर ये समुद्र में स्नान कर रहे थे, छिछला समुद्र था, अब वो नौका किसी तरह से जाए नहीं, निकले नहीं। तो वो देखा जैसे एक साधु सन्यासी जैसा आदमी स्नान कर रहा, साधु जैसा, वो आकर के इनके चरणों में गिर गया, ये प्रभु आप नौका किसी प्रकार से निकाल दीजिए, आप समर्थ हैं। तो उन्होंने अपनी कमर लगा दी और उसको ठेल दिया, और वो नौका भी चाय एकदम चालू हो गई, जब पानी में जब चली गई चलने लायक हो गई, तो नौका के मालिक ने कहा मैं आपको क्या दूँ, आपकी कैसा सेवा करूँ, नहीं मुझको कोई भी सेवा की जरूरत, तो भी कुछ आप मांगे, तो तुम्हारे पास में क्या है, तो सब कुछ इस नौका में भरा, हम बिजनेस करने के लिए जा रहे हैं, ये देखते हैं कि तुम्हारे पास में ये क्या मिट्टी भरी, ये क्या चीज़ है, तो गोपी तालाब का ये चंदन है, अच्छा तो गोपी चंदन है, तो ये गोपी चंदन हमको थोड़ा सा दे। तो उन्होंने एक बहुत दिशा एक चट्टान को ले करके इनको दी, उसको सिर पर ले आए, सिर पर उठा दिया, लेकर के किनारे आए तो वो गिर पड़ा, तो गिरने से उसमें से ठाकुर जी निकले, दधि मंथन करते हुए कृष्ण निकले, वो भी मूर्ति 12 मन पक्की, तो जिसके अंदर में वो
कितना बड़ा था,
वो कितना बड़ा गोपी चंदन का होगा, वो 20-25 मन से भी अधिक,
चट्टान भी कैसे बड़ा,
चट्टान कितना बड़ा भारी, उसको उठा करके ले आए, अब उस ठाकुर जी को अपने सिर पर रखा बड़े प्रेम से, चंदन को रहने दिया और उनको लेकर के चले, वहाँ से 5-6 मील दूर करके वहाँ पर रास्ते में उनके लिए 12 स्तोत्र रचना की, जो कि बड़े प्रसिद्ध हैं और उनके संप्रदाय में बहुत उस श्लोकों की मान्यता है, गौड़ियों में भी हमारे हम लोगों के मासिक गौड़ियों में भी हम लोगों के लिए गुरु जी ने इसको छपवाया, बहुत सुंदर श्लोक। वो चलते चलते चले जा रहे हैं और लाते लाते घर तक आते आते उन 12 स्तोत्रों को उन्होंने कम, अब उन्होंने मठ में रख करके उनका मूल मठ जहाँ पर उन्होंने रखा उसका नाम रखा उड़ूपी, और उड़ूपी में मूल मठ को रख करके और उसके चारों तरफ में और 4 मठ और उसका अलग अलग नाम दिया, और बीच वाला 5वां किस भाव से वो करते हैं, एक एक मठ में एक एक भारतवर्ष के चारों का विभाग एक एक मठ के अंदर में सौंप दिया, उत्तर में जो प्रचार करेंगे उनका उत्तराड़ी मठ रखा, उत्तर वाले मंदिर का विभाग, वहां पर 2 सन्यासी रहते थे, 2 शिष्य किया, यदि दोनों में से एक गत हो जाएगा एक दूसरा और सन्यासी बना लेगा, सब समय 2 सन्यासी जरूर रहेंगे, और किस रूप में उपासना करेंगे, जैसे गोपियां कृष्ण की उपासना करती वृंदावन की भावना लेकर, इस वो लोग सिर पर भी कपड़े अपने ही उसका रख लेते हैं, ये वो घूंघट जैसा गोपियों का भाव लेकर के वो पूजन कर, इसलिए चैतन्य महाप्रभु जी ने इस संप्रदाय को अपने संप्रदाय में रखा, ये अंततः कृष्ण को मानते हैं, रामानुज कृष्ण को नहीं मानते, माने उनकी उपासना नहीं करते, वो लक्ष्मी नारायण। ये विष्णु स्वामी में नृसिंह जी रह गए, निम्बार्क वाले वो रुक्मणी सप्तभामा द्वारका की उपासना, और कौन बचा? और ये इनमें कृष्ण है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण में देश में गए, किसी के संप्रदाय में कृष्ण को पूजित हुए तो हमने नहीं देखा। दधि मंथन कौर करेंगे, कृष्ण करेंगे जसोदानंदन। इसलिए जसोदानंदन को अपने उपास्य को देकर के महाप्रभु जी बड़े उद्दंड रूप से नित्य और कीर्तन किया। और वही नहीं, अद्वैताचार्य पुंडरीक विद्यानिधि बक्रेश्वर पंडित और जितने हैं नित्यानंद प्रभु, सब उसी संप्रदाय के अनुगत मध्वा ईश्वर पुरीपाद के गुरु माधवेंद्र पुरीपाद, जिसे सब लोग थी माधवेंद्र पुरी का इन लोगों से संबंध था। इनके गुरु का नाम लक्ष्मीपति तीर्थ था। चूंकि वो लोग उत्तर के किसी व्यक्ति को संन्यास नहीं देते थे, हीन समझते हैं, क्यों आचार विचार इनका नहीं है और संस्कृत का जैसा उच्चारण करना चाहिए लोग नहीं करते, इसलिए उन लोगों को संन्यास नहीं देते थे। उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया, माधवेंद्रपुरी जी ने उनको दीक्षा दे दिया, मंत्र दे दिए, किंतु संन्यास नहीं दिया। जब संन्यास नहीं दिया, इनकी एकांत इच्छा थी, इसलिए इन्होंने पुरी नाम के किसी व्यक्ति से इन्होंने संन्यास ले लिया और माधवेंद्र उनके शिष्य हुए ईश्वरपुरी का। अतः पहले से ही ब्रह्मा के बाद में नारद जी के बाद में व्यास, और व्यास जब उस समय बद्रिकाश्रम में थे, आज से करीब करीब 1500 वर्ष पहले, तो यहाँ से अपनी शिक्षा समाप्त करने के बाद में संन्यास लेकर के उन्होंने वेदांत सूत्र पर पहला अपना भाष्य रखना, और उसका नाम रखा अणुभाष्य, किंतु बृहद अणुभाष्य, एक और बीच का बनाया। और एक बनाया, उनके एक और शिक्षा गुरु थे, वो प्रतिदिन अणुभाष्य का पूरा पाठ करके, वेदांत सूत्र का पूरा पाठ करके तब ही अन्न जल ग्रहण करते थे। जैसे बहुत से लोग हैं गीता पूरा पाठ करके या विष्णु सहस्र नाम पाठ करके तब कुछ लेते हैं। और खरी उन्होंने उनके लिए छोटे, अब उस दिन पारण करने का समय बहुत कम था, एकादशी थी, द्वादशी के वो पूरा नहीं पाठ कर सकते थे, समय चला जाए, इसलिए उसको छोटे रूप में जो प्रकाश किया वो था अणु का अणुभाष्य, उसी को उन्होंने पढ़ा और फिर अपना पारण कर लिया, उसी दिन बना लिया। और बनाने के बाद में तीनों को वो गए बद्रिकाश्रम में, व्यास ये हमारा, ये हमने भाष्य लिखा, ये कैसा हुआ? उसके पास में पहले शंकर जी गए थे, शंकराचार्य, जब उन्होंने वेदांत सूत्र का भाष्य लिखा, उसका नाम शारीरक भाष्य जब लिखा, तो लेकर के गए वहाँ बद्रीनारायण में, बद्रीनारायण में गंगा को पार करके उसमें व्यास जी का बाद बद्रिका आश्रम है, वहाँ पर गए, उन्होंने उनको दिखलाया, तो उन्होंने कहा जैसे हुआ है, मैंने समय के अनुसार में हुआ है। और जब ये लेकर के वहाँ पर पहुँचे, व्यास जी का वाहन किया, तो बड़े प्रसन्न हुए और इनको शिष्य के रूप में ग्रहण किया और कहा कि तुम्हारी हमारी जैसे ही, हमारी जैसी अभिलाषा थी ऐसे ही तुम्हारा ये सुंदर भाष्य हुआ, और उनको शिष्य रूप में ग्रहण किया। इसलिए मध्वाचार्य जी के गुरु यद्यपि समय अंतर है, शायद उन्हें करीब करीब 4000 वर्ष का अंतर है, तो भी उनका उन्होंने दर्शन पाया और उनसे मंत्र लिया। यदि कोई अभी भी रूप गोस्वामी का शिष्य होना चाहे और वैसी निष्ठा हो, तो रूप गोस्वामी भी प्रकट होकर के सब कुछ कर सकते। इसलिए मध्वाचार्य का इतनी दूरी होने पर भी, समय का अंतर होने पर भी, व्यास जी ने इनको शिष्य के रूप में ग्रहण किया था। इसके बाद में मध्वाचार्य ने उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्व भारत और पश्चिम भारत सर्वत्र उन्होंने द्वैतवाद का प्रचार किया। शुद्ध द्वैत, एक शुद्धा द्वैत है, एक द्वैत है शुद्ध द्वैत, और एक है विशिष्टा द्वैत। विशिष्टा द्वैत रामानुज का, केवला द्वैत शंकर का, और विशिष्टा द्वैत रामानुज का, और मध्य जी का द्वैत द्वैता शुद्ध द्वैत, और विष्णु स्वामी का शुद्ध अद्वैत, और निम्बार्क का द्वैता द्वैत। ये चार हमारे आचार्यों के मत, इन मतों में थोड़ा सा परस्पर थोड़ा सा मतभेद होने पर चारों शंकर के परिपंक्ति हैं विरोधी, और सब सबने शंकराचार्य के मत को खंडन करके वैष्णव धर्म की स्थापना। इनमें सबसे अधिक भक्ति के निकट में मध्वाचार्य, भगवान से जीव का भेद नहीं रहने से वो भजन ही नहीं कर सकता है, इसलिए कन्फ्यूजन हो सकता है विशिष्टा द्वैत में और शुद्ध अद्वैत में कन्फ्यूजन हो जाएगा, जो वो सब अद्वैत बात है, किंतु इसमें कोई भी शंका की बात नहीं। जीव और ब्रह्म में भेद है, जीव और जीव में भेद है, जीव और जड़ में भेद है, जड़ और जड़ में भेद है, और जड़ और ब्रह्म, ये पांच भेद इन्होंने माना, और इसी के ऊपर में भक्ति की प्रतिष्ठा की। इनके भी 10 मूल हैं, 10 सिद्धांत हैं, जिसको बलदेव विद्याभूषण ने प्रमेय रत्नावली में, हम इनके संप्रदाय में शाखा हम लोग संप्रदाय हैं, और उनका विचार और हम लोगों का विचार प्राय मिलता जुलता है। उपासना में कुछ थोड़ा सा अंतर होने पर भी, जैसे हम लोगों का है महाप्रभु के जो विचार हैं, आराध्यो भगवान ब्रजे सतनस्तद्धाम वृंदावनम रम्या काचित उपासना बजुवधुवर्गे निजा कल्पिता श्रीमद्भागवतम प्रमाण अम्लम प्रेमात्मत्पोमा श्री चैतन्य महाप्रभुर्मतमिदम तत्रागुरो न पर। बलदेव विद्याभूषण ने प्रमेय रत्नावली में उस श्लोक को उन्होंने दिया है, जो मध्वप्राह
विष्णु पुरातनम अखिलम अम्य विद्यं च विश्वं सत्यं हृदं च जीवान् हरिचरण जुषं स्थातं मञ्च तेषां मोक्षं विष्णुं जिलाभं तदमल भजनं तस्य हेतुं प्रमाणं प्रत्यक्षायित्रयं चेत् पद्धति हरिकृष्ण के चरण चरण।
उन्होंने बतलाया जीव कदापि ब्रह्म नहीं हो सकता, जीव ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म का सेवक है, अनुचेतन है, माया में मुक्त होकर के जीव बद्ध जीव और मुक्त जीव है, माया से मुक्त है। भक्ति के द्वारा ही एकमात्र भगवान को पाया जाता है, मुक्ति माने भगवान में मिलना नहीं है, बल्कि मुक्ति माने अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होकर के भगवान की सेवा प्राप्ति, विष्णुंग्री लाभ मुक्ति, विष्णु के चरण कमलों की सेवा प्राप्ति का नाम ही मुक्ति। इस विषय की उन्होंने स्थापना की, और प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द, ये तीन को प्रमाण के रूप में हम लोग उसी को तीन को ही प्रमाण दे। इसी प्रकार से उनका विचार है सब। आज ही के दिन उनका आविर्भाव हुआ था, उनको पवन देव का या हनुमान जी का तृतीय अवतार बतलाया जाता है, वो हम लोगों पर कृपा करें। आज के दिन हम लोग भक्ति में प्रवेश, मायावाद के चक्कर में कभी न पड़े, ये उनसे विशेष किताब आज यही तक है। और आज अभी कीर्तन है, तुम्हें जाबे ते पास अकीनाथ जब तले तुम सब लोगों को लेकर के चला जाए कीर्तन करो, और सब जो जो हैं। अच्छा, कल हम लोगों की इच्छा थी, प्रोग्राम बनाया था कि कल सवेरे से हम लोग नगर संकीर्तन आरंभ करेंगे, तो देखा जी बहुत से लोग बीमार हो गए, तो यदि आप लोग कल ठीक ना हो तो त्रयोदशी से करें या द्वादश त्रयोदशी से, और नहीं आप लोग यदि हो ठीक तो कल 7 बजे के करीब हम यहाँ से 8 बजे तक हम घूमें, आप लोग जैसा निर्णय करेंगे हमको बताएं। और यदि अस्वस्थ है तो परसों से होगा और नहीं तो कल से। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।